हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तब काली शक्ति का मालिक अमित अपने होठों से तारा के होठों को चूम लेना चाहता था। वो उस वक्त तारा को अपना बना लेना चाहता था। उसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी। तारा को देखने के बाद वो पूरी तरह से पागल हो गया था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि उसने जो अच्छाई वाली इमेज यहाँ पर बनाकर रखी है वो इस तरह से गायब हो जाएगी। तभी जैसे ही उसने तारा के होठों को छूने की कोशिश की, तभी अचानक से तारा ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा था, जिसके लगते ही काली शक्तियों के मालिक अमित के पूरे जिस्म में एक अलग ही तरह का जोरदार करंट दौड़ पड़ा था और उसकी आंखें अपने आप ही बंद होने लगी थी। और उसके बाद तारा परी दौड़कर सीधा अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में जैसे ही तारा आई तो वो देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। अमन उससे पहले ही कमरे में उसी का इंतजार कर रहा था। तब तारा को समझने देर नहीं लगी कि जरूर अमन ठाकुर की तेज दौड़ने वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए यहाँ तक उससे पहले आ पहुँचा है। उस वक्त तारा का मूड पूरी तरह से खराब था, क्योंकि अमित ने जो उसके साथ हरकत की थी और उसने उसे जो सबक सिखाया था, उसके बाद वो अभी इस तरह की किसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी। लेकिन अमन, जो कि बेड पर लेटा हुआ तारा का इंतजार कर रहा था, उसके इरादे अब कुछ और थे। तारा को इतना ज्यादा करीब से देखने के बाद, उसकी खूबसूरत जिस्म देखने के बाद, अमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से एक बार फिर तारा को पाने के लिए तैयार था। और अचानक से अमन ने जब तारा को एक जगह खड़े हुए देखा तो वो हैरान हो गया और जल्दी से आगे बढ़कर वो तारा के पास आया था और अपनी उंगलियों को तारा के बालों में से निकालते हुए उसकी गर्दन के पास किस करने लगा था। लेकिन तारा उस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि अमित ने उसके साथ काफी बुरी हरकत की थी। अमित का उसकी कमर को छूना, उसके हाथ को छूना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और जिस तरह से अमित अपने होठों से उसके होठों को छूना चाहता था, वो देखकर तारा का दिल नफरत से भर उठा था। तो इसीलिए तारा बिल्कुल भी अमन के साथ किसी भी तरह से इंटीमेट नहीं होना चाहती थी। लेकिन अमन था कि वो तो उस वक्त तारा को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहता था। तो अचानक अमन धीरे से तारा को अपने करीब करते हुए उसकी नेक को किस करता हुआ उसकी पूरी गर्दन पर किस करने लगा था। तब अचानक तारा ने अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए अमन को जोरों से धक्का मार दिया था और अमन सीधा बेड पर जा गिरा था। तारा के इस तरह के एक्शन से अमन पूरी तरह से हैरान हो गया और उसकी ओर देखकर कहने लगा था, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे साथ बर्ताव करने की? क्या तुम भूल गई हो मैं कौन हूँ? मैं एक जिन हूँ जिन, और साथ ही साथ मैं जिन्नों का महाराज हूँ, और तुम मेरे साथ इतना कैजुअल तरीके से बर्ताव कैसे कर सकती हो? जैसे ही तारा ने अमन की बातें सुनी, वो हैरानी से बोली थी, देखिए मैंने आपसे कहा है ना, आप इस तरह से मेरे साथ अभी फिजिकल नहीं हो सकते हैं, और अभी दिन में हम ऑलरेडी दो बार एक दूसरे के साथ फिजिकल हो चुके हैं, साथ ही साथ रात में भी हम फिजिकल हुए थे, आखिरकार कितनी बार आप ये सब करेंगे? हाँ, मुझे परेशानी हो सकती है, आप तो एक जिन हैं, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ ना, तो इंसान को तो परेशानी हो सकती है ना, आपको ये बात समझनी होगी। तारा की बात सुनकर अमन को बहुत तेज गुस्सा आया था, क्योंकि तारा बिना रुके सीधा बाथरूम में घुस गई थी। लेकिन अमन की ईगो अब हर्ट हो गई थी। वो सोचने लगा था कि आखिरकार तारा है तो एक मामूली इंसान ही, तो वो ऐसे कैसे उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती है? लेकिन तारा को उस हालत में देखने के बाद, उसकी खूबसूरती देखने के बाद, अब अमन के लिए रुक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो इसलिए उसने सारी हदों को पार करते हुए जल्दी ही अपने आप को कपड़ों से आज़ाद करके अपने जादू की शक्ति के द्वारा उसने वॉशरूम के दरवाजे को खोल दिया था और सीधा वहां अंदर चला गया था। तारा परी वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े ही चेंज कर रही थी और उसने भी अपने सभी कपड़े उतार रखे थे, क्योंकि वो एक बार और हल्का सा शावर लेकर कपड़े चेंज करना चाहती थी। लेकिन अमन को यहाँ इस तरह से देखकर तारा पूरी तरह से हैरान थी और वो जल्दी से पास में रखा हुआ एक तौलिया खुद पर लपेटती हुई अमन की ओर देखकर बोली थी, ये क्या बदतमीजी है अमन सर, आप इस तरह से बाथरूम में कैसे आ सकते हैं? मैंने आपसे कहा ना, मेरा अभी किसी भी चीज़ का कोई मन नहीं है, तो फिर आप ऐसे कैसे यहाँ आ सकते हैं? तब अचानक अमन थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था और उसने बड़ी ही बुरी तरह से तारा के होठों को चूमते हुए कहा था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और सिर्फ मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारे आसपास रहना पसंद है, क्योंकि मैं तुमसे एक मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकता। तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा ये जिस्म मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम कभी भी मुझे अपने आप से दूर नहीं करोगी, कभी भी नहीं करोगी। अब तारा अमन की इस तरह की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि अमन का इस तरह का बर्ताव तारा को अब अजीब लगने लगा था। पहले तो वो अमन के प्यार में डूबी हुई थी, लेकिन अब तो पूरी हद ही हो गई थी।
तारा को अब बुरा लगने लगा था और उसे उसे पहले हुए रक्षा की याद आने लगी थी। लेकिन इस बार इसमें तारा की मर्जी शामिल नहीं थी, तो इस बात का अमन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से और सदमे में था और वो मल्लिका को शादी की शॉपिंग के बहाने से लेकर बाहर आया था और बाहर सीधा कहीं और नहीं अपने उस घर में आ गया था जो उसने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा बनाया था। वहां आकर उसने मल्लिका पर अपना सारा गुस्सा उतारना शुरू कर दिया था और कहने लगा था, उस मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जानती हो, प्यार करना चाहता था मैं, उसे किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा। मेरा जुनून बन चुकी है, मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा। एक बार वो जिन्नों का वंशज पैदा हो जाए, उसके बाद वो इंसान बन जाएगी। भले ही उसके थप्पड़ में काफी ज्यादा ताकत थी, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक कि उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता। उसके बाद तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी, फिर उसे मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। बुरी तरह से दहाड़ा था और मल्लिका को तारा समझकर उसके साथ हाथ सारी हदें पार करने लगा था। मल्लिका समझ चुकी थी कि आज काली शक्तियों का मालिक उसे चूमने तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि आज वो अपना सारा गुस्सा उसके इस बुढ़ी जिस्म पर दिखाएगा। क्योंकि मल्लिका अब भले ही दिखने में जवान और खूबसूरत थी, लेकिन उसका जिस्म किसी बूढ़े इंसान के जिस्म के जितना ही था और काली शक्तियों के मालिक अमित ने जल्दी ही मल्लिका को तारा समझकर बड़ी ही बुरी तरह से उसके उभरे हुए अंगों के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, वो न केवल उसे चूम रहा था बल्कि वो उसे बड़ी ही बुरी तरह से चूस रहा था, जैसे कोई पानी का गिलास पानी पीता है, गिलास से उसी तरह से पी रहा था। और उसने उसे बड़ी बुरी तरह से नोच डाला था और उस पर अपना सारा गुस्सा सारी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए रिश्ता बना रहा था। और मल्लिका की आंखों से खून के आंसू निकलने शुरू हो गए थे और उसके निकले हुए आंसू सीधा उसके तकिए को भिगो रहे थे।
वहीं दूसरी ओर सोनल परी को अक्षत की याद आ रही थी। वो सोच रही थी, अगर वो जिस्मानी रिश्ता बना सकती है तो वो भी तो अक्षत के साथ रिश्ता बना सकती है, उसके साथ कुछ दिन कुछ रातें गुजार सकती है। भले ही उसे जिंदगी भर यहाँ नहीं रहना है, लेकिन सोनल परी भी जवान थी, खूबसूरत थी, और जब भी कोई जवान हो जाता है उनकी शादी परीलोक में ही, परीलोक के जो आदमी हुआ करते थे उनके साथ करवाई जाती थी, वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन सोनल परी को तो परीलोक में नहीं बल्कि पृथ्वीलोक पर एक इंसान पसंद आया था और वो उसके साथ अब अपनी रातें हंसी करना चाहती थी। वेल, अब चूंकि ज्यादा समय नहीं बचा था और आज शाम को ही हल्दी का फंक्शन होना था और करिश्मा जी ने अपने आप को हर एक फंक्शन से दूर रखा था, लेकिन उनकी मजबूरी थी इसीलिए उसने अमरेंद्र जी को खुश करने के लिए अपनी निगरानी में सारे फंक्शन का काम करवाना शुरू कर दिया था और सोनल परी उनकी मदद करने लगी थी। किसी को किसी तरह का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, लेकिन करिश्मा जी ये बात जानती थी कि सोनल एक परी है और काफी हद तक सोनल को पसंद भी करने लगी थी। वेल, जल्दी ही सोनल परी ने करिश्मा जी के साथ मिलकर बड़ा ही ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था और सारा का सारा इंतजाम उन्होंने अमन के बड़े से खूबसूरत गार्डन में किया था ताकि वहां पर मेहमानों को अच्छे से ट्रीट कर सके। अब चूंकि शाम को ही हल्दी का फंक्शन होना था, लेकिन अमित गायब था। अमित तो इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि मल्लिका की बाहों में था, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। अमित की शक्तियां काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं क्योंकि उसने मल्लिका के साथ जबरदस्ती ही सही लेकिन जिस्मानी रिश्ता बना लिया था, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां काफी हद तक कमजोर हो चुकी थीं और उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी ताकि वो वापस से अपने हल्दी के फंक्शन अटेंड कर सके। इसके लिए उसने जैसे तैसे नहा धोकर कपड़े पहने थे और एक यज्ञ करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसने अपने काली शक्तियों के महागुरु का आह्वान किया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसकी कोई शक्तियां लौटा सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसके काली शक्तियों के महागुरु ही हैं जो उसे उसकी शक्तियां वापस दे सकते हैं। वहीं मल्लिका अमित के इस तरह से जबरदस्ती करने पर काफी हद तक अंदर ही अंदर टूट कर रह गई थी और सोचने लगी थी कि न जाने इस काली शक्तियों के मालिक अमित से उसका पीछा कब छूटेगा, क्योंकि मल्लिका तो बस जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ अमन के साथ अपनी रात रंगीन करना चाहती थी। वो इस तरह से काली शक्तियों के मालिक के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब उसकी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी थी। वेल, जैसे तैसे मल्लिका ने पहले खुद को रेडी किया था, हालांकि काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसे काफी ज्यादा बड़े निशान उसके पूरे जिस्म पर दिए थे, तो मल्लिका ने भी अपने आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अंदर के काले साए को हुक्म दे दिया था कि वो उसकी बाहरी त्वचा पर लगे सभी के सभी जख्मों को एकदम ठीक कर दे, क्योंकि मल्लिका को पता था उसे जल्द से जल्द हल्दी के फंक्शन में जाना होगा, क्योंकि वहां पर अमन भी मौजूद होगा और अमन के बिना देखे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। तो इसीलिए अमित को वहीं छोड़ने के बाद मल्लिका अपने जिस्म के सभी निशानों को ठीक करने के बाद जल्दी ही अमन के बंगले की ओर रवाना हो चुकी थी, लेकिन काली शक्तियों का मालिक अमित वहीं बैठा हुआ अभी अपना हवन करता ही रह गया था।
वहीं दूसरी ओर अमन ने तारापरी के साथ काफी हद तक अपनी मनमानी कर ली थी, लेकिन तारापरी का दल अब चकनाचूर हो चुका था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मर्द के लिए, चाहे वो जिन हो, राक्षस हो या इंसान हो, सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत का सामान बन चुकी है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती को नोचना चाहते हैं, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। तारापरी का मन कड़वाहट से भर गया था। कहां तो वो अमन की मोहब्बत में डूबी हुई थी और कहां अब अमन के इस तरह से बार बार उसे मजबूर करने पर उसका दिल पूरी तरह से नफरत से भर उठा था। वेल, वहीं दूसरी ओर अमन अपनी इच्छा पूरी करने के बाद जल्दी ही वहां से बाहर आ गया था, और बाहर आकर जैसे ही वो अपने बगीचे में गया तो बगीचे की खूबसूरती देखता रह गया था, और उसने जमकर सोनल परी और साथ ही साथ करिश्मा जी की तारीफ की थी। हालांकि अमन के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ी सी उलझन भी थी कि उसके पिता उसकी शादी के फंक्शन में मौजूद नहीं थे, लेकिन अमित की शादी का हर एक फंक्शन वो अपने हाथों से करवा रहे थे। कहीं ना कहीं अमन का दिल बार बार इस बात के लिए अजीब सा हो रहा था। तभी उसने करिश्मा जी के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया था। जैसे ही करिश्मा जी ने अमन की बात सुनी तो वो काफी हद तक खुश हो गई थी, और जल्दी से करिश्मा जी अमरेंद्र जी के पास जाने लगी थी। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ रखा था। अब जैसे ही अमरेंद्र जी ने करिश्मा और अमन को एक साथ में देखा तो वो हैरानी से उनकी ओर देख कर कहने लगे थे, क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ना कहीं अमरेंद्र जी को इस बात का थोड़ा सा डर था कि कहीं करिश्मा जी ने जो भी उनके बीच थोड़ी बहुत खटपट हुई थी उसके बारे में अमन को तो कुछ नहीं बता दिया है, तो इसीलिए उन्होंने अमन के वहां आने का रीजन पूछा था। तभी करिश्मा जी ने अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा, देखिए अगर आप अमित की शादी कर रहे हैं तो अमन ने भी अपनी एक इच्छा जाहिर की है। देखिए जब अमन की शादी हुई थी आप उसकी शादी में मौजूद नहीं थे, तो अब अमन ने फैसला किया है कि वो भी तारा के साथ सारे फंक्शन करना चाहता है, वो भी आपकी आंखों के सामने।